दर्शन की आवाज में बिहारी के डोहों का वाचन और व्याख्या सुनिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नायरी सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरि होए दुति होए। संदर्भ, यह दोहा सत्संग के प्रारंभ में मंगलाचरण है। कवि ने इसमें राधा की स्तुति की है। केंद्रीय भाव, राधा को देखकर स्वयं श्री कृष्ण भी आनंदित हो जाते हैं, अतः कवि राधा को भव बाधा हरण करने वाली मानकर उसकी वंदना कर रहा है। व्याख्या, पहला, वे चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करे, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा भी निष्प्रभ हो जाती है। दूसरा, वे चतुर राधा मेरे सांसारिक क्लेशों को दूर करे, जिनका ध्यान करने मात्र से समस्त ताप एवं दुख दूर हो जाते हैं। तीसरा, राधा जी के शरीर की आभा कृष्ण के शरीर पर पड़ते ही उनके शरीर की आभा का हरण कर लेती है, वे राधा में होकर आनंदित हो जाते हैं, अतः राधा में भाव बाधा हरण करने की शक्ति है। तभी तो बिहारी उनके भाव बाधा हरण करने की प्रार्थना करते हैं, जिससे वे भाव बाधा से मुक्त होकर प्रसन्न हो जाए। विशेष, पहला, कवि पर निम्बकाचार्य और सखी संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, साथ ही राधा को श्रृंगार रस की अधिष्ठात्री माना गया है, अतः यहाँ राधा की उपासना की गई है। प्रस्तुत मंगलाचरण में राधा कृष्ण को नमस्कार ही नहीं किया गया है, वरन वस्तु निर्देश भी किया गया है। तीसरा, हरित दुति में मुहावरे का सुंदर काव्यात्मक प्रयोग है। अलंकार, झाई श्याम एवं हरित दुति में श्लेष है, युक्ति द्वारा कथन का समर्थन होने से काव्यलिंग अलंकार। भाव साम्य, अपने भव बाधा मय राधे तुम कुशलासी, हरिरपि दघति हरित दुति यदि माधव मुपियासी, श्रृंगार सप्तसती से। फिरी फिरी चित उत ही रहत टूटी लाज की लाव, अंग अंग छवि झौर में भयो भौर की नाव। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में प्रियतम की छवि पर विमुग्ध नायिका अपनी सखी से अपने निसंकोच प्रेम परवस्ता की दशा का वर्णन करते हुए कहती है। व्याख्या, हे सखी, मेरा मन अपने प्रियतम नायक की सौंदर्य रूप नदी के झूगड़ में फंसकर भंवर अर्थात पानी के घुमावदार चक्कर में पड़ी हुई नौका के समान घूम रहा है। वह बार बार नायक की ओर घूम फिर कर पहुंचा जा रहा है, उसे नायक की ओर से खींचने का कोई उपाय ही नहीं रह गया है, क्योंकि प्रेमाधिक्य एवं सौंदर्याकर्षण के कारण अब लज्जा रूपी रस्सी टूट गई है। भाव यह है कि मेरा मन नायक के प्रति इतना अधिक आसक्त हो गया है कि मेरे मन में स्वल्प संकोच शेष नहीं रह गया। कीने हूं कोटिक जटन अब कही काधे कौन, भव मनमोहन रूप मिली पानी में कौलौन। प्रसंग, नायिका के प्रेम में आत्मविभोर हो गई है, संख्या उसे समझाती है, किंतु वह सखियों से अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए अपनी तल्लीनता का वर्णन करते हुए कहती है। व्याख्या, हे सखी, मेरा मन श्री कृष्ण की रूपी माधुरी में मिलकर एकनिष्ठ हो गया है, अब वह पानी में मिले हुए नमक के समान घुल मिलकर एक रूप हो गया है, अब अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी उसे कोई विलग नहीं कर सकता। कहत नटत रिझट खिजट मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननी ही सो बात। संदर्भ, सखी का कथन सखी के प्रति है। नायक और नायिका संयोग वश किसी घर में आए हैं, कोई उत्सव हो रहा है, भवन मनुष्यों से भरा हुआ है, वे दोनों चातुरी से आंखों की चेष्टा द्वारा परस्पर प्रेम प्रकट करते हुए सारी बातें कर लेते हैं। दोनों की इस दशा का वर्णन सखी से कह रही है। व्याख्या, नायक कुछ कहता है, नायिका से प्रेम प्रदर्शित करता हुआ रति की प्रार्थना करता है, जिस पर नायिका मना कर देती है। मन मन भावे मूड हिलावे वाली बात है, नायक उसके मना करने पर की चेष्टा पर रिझता है, इस पर नायिका खींच उठती है, यह खींच भी बनावटी है। पुनः मिलकर दोनों प्रसन्न होते हैं, कोई देख ले इस विचार से लज्जित हो जाते हैं, इस प्रकार भरे भवन में नेत्रों से ही सारी बात कर लेते हैं। विशेष, नायिका परकिया क्रिया विदग्धा है। दूसरा, इस दोहे में कल किंचित हाव की योजना के अंतर्गत गर्व अमर्ष हर्ष इन तीनों संचारी भावों की योजना है, मूर्त व्यापार विधान देखते ही बनता है। अलंकार, क, पूर्वार्धी में कारक दीपक है, दुख उत्तरार्ध में विभावना है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहकाल, अली कली सी सो बंध्यो आगे कौन हवाल। प्रसंग, मिर्जा राजा जयसिंह अपनी नवविवाहित रूपवती रानी के प्रेम पास में फंसकर राजकाज से विमुख हो गए थे, बिहारी ने इस दोहे को उनके पास लिखवा कर भेजा, उन्हें सावधान किया और इससे वे प्रभावित होकर पुनः राजकाज देखने लगे। इसमें भ्रमर और कली के माध्यम से अनियुक्तिपूर्वक राजा को विलासिता के प्रति सजग किया है। व्याख्या, हे भ्रमर, इस कली में अभी पुष्प नहीं है, पुष्प रस की तो बात ही क्या, इसका समुचित विकास भी नहीं हो पाया, अभी यौवन की रसमारकता भी इसके अंग प्रत्यंग पर नहीं चढ़ पाई है। इस अविकसित यौवनावस्था में ही जब तुम इस पर इतना अधिक आसक्त होकर अपनी सारी चेतना से मोहित हो रहे हो, तो जब यह पूर्ण यौवन को प्राप्त होगी तो तुम्हारी उस समय क्या दशा होगी। मंगल बिंदु सुरंग मुख शशि केसर आर गुरु, एक नारी लही संग रसमय किए लोचन जगत। संदर्भ, यह नायक का कथन स्वागत रूप में है या वह नायिका की किसी अंतरंग सखी से कह रहा है। नायिका के मुख पर लाल बिंदु तथा केसर की पीली आड़ देखकर नायक की आंखें अनुरागमय हो गई। व्याख्या, नायिका का मुख चंद्रमा है, उसके मस्तक पर लगा हुआ रोली का बिंदु मंगल है और केसर का आर्टिका बृहस्पति है। इन तीनों ने एक राशि नायिका का पाकर संसार के नेत्रों को जल में बना डाला है। भाव यह है कि जिस प्रकार मंगल चंद्रमा और बृहस्पति के एक राशि होने पर भी इतनी अधिक जलवृष्टि होती है, संसार जलमय हो जाता है, उसी प्रकार अपने चंद्रमा के समान मुख पर केसर का आड़ा तिलक और रोली का बिंदी लगाए हुए नायिका देखने वालों को रसमय बना रही है। विशेष, इस दोहे में बिहारी का परिपक्व ज्ञान ज्योतिष ज्ञान व्यक्त हुआ है। ज्योतिष के अनुसार यदि चंद्रमा मंगल और बृहस्पति एक ही राशि पर हो तो बहुत अधिक वर्षा होती है। बिहारी ने यहाँ सिद्धांत को नायिका पर घटाया है। एक नारी समारूढ़ हो चंद्रमा धरनी सुतो, यदि तत्र भवे जीवस तैद कार नारविता माही। दूसरा, वर्षा ज्ञान के निमित्त ज्योतिष में 7 नारियां मानी गई हैं। इनमें से प्रत्येक में गति 4-4 नक्षत्रों में सर्पाकार होती है। जब चंद्रमा मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि वे एक ही नारी के चारों नक्षत्रों में किसी पर होते हैं, चाहे नक्षत्रों में किसी एक पर अथवा भिन्न भिन्न पर, ऐसी दशा में संसार को जलमग्न करने वाली वर्षा होती है। रस सिंगार मंजन किए कंजन भंजन दैन, अंजन रंजनहु बिना खंजन गंजन नैन। संदर्भ, इस दोहे में नायिका के नेत्रों की प्रशंसा है। सखी सखी से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा कर रही है अथवा सख नायक से नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करके उसे नायिका से मिलन को प्रेरित कर रही है। व्याख्या, उस सुंदरी नायिका के नेत्र श्रृंगार रस में नहलाए हुए हैं, अर्थात उसके नेत्र प्रेम रस से भरे हुए हैं। वे रसाद्रता और सौंदर्य में कमलों का मान भंग करते हैं। बिना अंजन लगाए हुए वे सहज ही कजरारे हैं और चंचलता में खंजन का भी मान भंग करते हैं। विशेष, नायिका श्रृंगार रस का भी उद्दीपन है। वह यौवनवती मुग्धा नायिका है। नक्षिक वर्णन के अंतर्गत उसके नेत्रों का यह वर्णन बड़ा ही मनोहरी है। अलंकार, वृत्यानुप्रास उपनगारिका वृत्ति कोमल और मधुर वर्णों का प्रयोग होने से, उपमेय से उपमान का निरादर होने से प्रतीप। बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माह, निरखी दुपहरी जेठ की छाहो चाहती छा। संदर्भ, यहाँ कवि जेठ की दुपहरी की भीषणता का वर्णन कर रहा है। जेठ की दुपहरी में वृक्षों की छाया ठीक उनके नीचे पड़ती है। व्याख्या, जेठ की दुपहरी के भीषण तपन देखकर संसार में शीतलता प्रदान करने वाली छाया भी छाया खोजती है। इस कारण छाया अपने शरीर रूपी धर में बैठकर अति सघन वन में ही बैठ जाती है। विशेष, जेठ की दुपहरी में नायक और नायिका किसी कुंज में बैठे हुए हैं। नायिका किसी कारणवश रूठ जाती है और घर जाना चाहती है। इस पर सखी अपने उक्त वचन के दोहे द्वारा रोकना चाहती है। इस स्थिति में अलंकार प्रस्तुतांकुर होगा। दूसरा, कवि की उक्ति मानने में अत्युक्ति अलंकार है। इस दोहे में बिहारी की प्रकृति की अति सूक्ष्म निरंजन शक्ति का पता लगता है। जेठ की दुपहरी में सूर्य ठीक सिर के ऊपर आ जाता है। वृक्षों की छाया उनके घेरे के बाहर नहीं जाती। घरों की छाया भी छतों के नीचे ही रहती है, वह दीवारों के बाहर नहीं पड़ती। सायक सम मायक नयन रंगे त्रिविध रंग गात, जखों बिलखी दूरी जात जल लखी जल जात लजात। संदर्भ, यहाँ दूत का कथन नायिका के प्रति है। दूती नायिका को किसी सरोवर के तट पर संकेत स्थल पर बैठा कर नायक के पास आई है। वह नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करती है और निर्दिष्ट स्थान पर नायिका का होना व्यंजित कर देती है। व्याख्या, हे लाल, उस नायिका के नेत्र संध्या के समान मायावी है तथा श्वेत श्याम और रत्नार त्रिविध रंगों में अपने गात को उसी प्रकार रंगे हुए जिस प्रकार संध्या काल त्रिविध रंग में होता है। उसके नेत्रों को देखकर मछलियां दुखी होकर जल में छिप जाती है और कमल जलकर संकुचित हो जाते हैं। विशेष, इस दोहे में संध्या की प्रकृति का चिंतन हुआ है। संध्या त्रिविध रंगमयी होती है। संध्या होते ही मछलियां गहरे पानी में बैठ जाती है और कमल संकुचित हो जाते हैं। दूसरा, मीन और कमल नेत्रों के लिए प्रसिद्ध उपमान है, परंतु नेत्रों के सौंदर्य के सामने ये दोनों अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। मछली दुखित जल में छिप जाती है और कमल लजाकर संकुचित हो जाते हैं। लजात शब्द में लाक्षणिकता से अर्थ संकुचित होना लिया गया है। कहा भयो जो बी छुड़े मो मन तो मन साथ, उड़ी जाती की तहू गुड़ी तो उड़ायक हाथ। प्रसंग, नायिका एक दूसरे से नायक से दूर हो गए। नायक को भय है कि कहीं नायिका दूरी के कारण यह न समझ बैठे कि नायक को मेरा प्रेम विस्मृत हो गया है। इसलिए वह अपने प्रेम की दृढ़ता का विश्वास लाते हुए नायिका के पास संदेश भेजता है। व्याख्या, हे प्रियतमे, में इस समय हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए हैं, किंतु इससे क्या होता है, अर्थात इससे प्रेम में कोई अंतर नहीं पड़ सकता, क्योंकि शरीर से दूर होने पर भी तुम्हारा मन एक दूसरे के सन्निकट है। देखो आकाश में पतंग कितनी दूर उड़ जाता है, परंतु उसकी रस्सी तो सर्वदा उड़ाने वाले के हाथ में ही रहती है। उसी प्रकार हमारा मन तो सदा तुम्हारे साथ ही है। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहीं है सब तेरो ही मेरे ही की बात। प्रसंग, प्रेषित पतिका अपनी प्रवासी प्रिय को प्रेम संदेश भेजना चाहती है, किंतु अपने मनोभावों को यथार्थ रूप से पत्र या संदेश के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पा रही है, इसलिए कहती है कि व्याख्या, हे प्रियतम, मैं अपने मनोभावों को पत्र लिखने में समर्थ नहीं पा रही हूँ, संदेश करने में भी लज्जा लग रही है। संभावना की जा सकती है कि विरह ताप से कागज के जलने या आंसुओं के जल से भीग कर गलने का भय है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आपका हृदय मेरे हृदय की सारी बात को आपके सम्मुख कर देगा। ज्ञातव्य है कि प्रेम एवं प्रिय का हृदय एक दूसरे के प्रेम तत्व को जानता है। जब जब वह सुधि कीजिए, तब तब सब सुखी सब सुधि जाही, आंखिन आंख लगी रहे आंखों लागती नाही। प्रसंग, कोई योगिनी नायिका अपनी विरह व्यथा अपनी सखी से व्यक्त कर रही है। हे सखी, जब जब मैं प्रियतम को याद करती हूँ, तब तब मेरी सभी यादें अर्थात संपूर्ण चेतना नष्ट हो जाती है, मेरे हृदय में उनकी स्मृति छा जाती है। इस प्रकार हृदय के नेत्र इनके नेत्रों में लग जाते हैं। विरह व्यथा के तीव्र हो जाने पर आँखें भी नहीं लग पाती, अर्थात मुझे नींद भी नहीं आ पाती। भाव यह है कि प्रिय के स्मरण से विरह वेदना उद्दीप्त हो जाती है और तब किसी प्रकार का विश्राम नहीं मिल पाता। कौन सुने कांसों कहो, सुरति बिसारी ना, बदा बदी जो लेट है, बदरा बदरा। प्रसंग, वियोगिनी नायिका अपनी विरह व्यथा नायिक की निष्ठुरता का वर्णन करते हुए सखी से कह रही है। हे सखी, जब मेरे प्रिय स्वामी मेरी याद भुला दी, तब मैं किससे अपनी व्यथा कहूँ भी तो सुनने वाला कौन है, अर्थात कोई भी सुनकर उस पर ध्यान नहीं दे सकता। बुरे मार्ग पर चलने वाले ये बादल बाजी लगाकर मेरे प्राणों को नष्ट कर रहे हैं। भाव यह है कि बादलों के दर्शन विरह व्यथा को और भी उद्दीप्त कर असह कष्ट देने लगते हैं। अंग अंग नग जग मग, दीप सिखा सी देह, दिया बधाए हो रहे, बड़ो उजेड रोगे। प्रसंग, प्रस्तुत दोहे में एक कृषांगी छबीली नायिका का चित्रण किया गया है। नायिका की सखी नायक से उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रही है। व्याख्या, सखी कहती है, हे नायक, उस सुंदरी नायिका के अंग प्रत्यंग से सुंदरता की असीम किरणें उठ रही है, इससे उसका शरीर अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। यही कारण है कि मूलतः नायिका के कृषांगी होने पर भी उसका शरीर भरा पूरा प्रतीत होता है। दुर्बल भी शरीर सौंदर्य प्रकाश से स्वस्थ एवं मनोरम प्रतीत होता है। छुटी न शिशुता की झलक, झलक क्यों जोबन अंग, दीपति देह दुहिनी, मिली दीपति ताफ्ता रंग। संदर्भ, यह नायिका की वह संधि अवस्था का वर्णन है। उस नायिका के शरीर से अभी लड़कपन की झलक नहीं गई और जवानी की कांति आ चली है। उसके शरीर में बचपन और यौवन दोनों अवस्थाओं के मेल से उसके शरीर की कांति धूप छां के रंग की तरह दोरंगी हो गई है। विशेष, पहला, नायिका की वह संधि का वर्णन संयोग श्रृंगार रस की किसी उद्दीपन रूप में हुआ है। दूसरा, सखी का कथन सखी के प्रति माना जा सकता है, जिसमें वह किसी वह संधि प्राप्त नायिका का दशा का वर्णन कर रही है। तीसरा, दूती का कथन नायक के प्रति माना जा सकता है, वह नायिका की वह संधि की अवस्था का वर्णन कर उसे मिलने के लिए प्रेरित करती है। इस दिशा में नायिका कुंवारी कन्या पर किया है। अलंकार, दूसरी पंक्ति में वाचक लुप्तोप म दीप्ति मिली में ड वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास। पांचवा, टाफ्टा फारसी का शब्द है। पत्रा ही तिथि पाई यत, वा घर के चहुपास, नित प्रतिपुण्योई रहे आनंद ओप उजास। संदर्भ, सखी नायिका के मुख सौंदर्य की प्रशंसा में नायक से कह रही है। व्याख्या, उस सुंदर नायिका के घर के चारों ओर तिथि का ठीक ठीक पता पत्र से ही लग जाता है, क्योंकि उसकी मुख के चमक और प्रकाश की नित्य पूर्णमासी ही बनी रहती है। तिथि तो तिथि पत्र से ही जानी जाती है अथवा चंद्रमा के उदय होने के समय से, परंतु नायिका जहाँ रहती है उसके घर के आसपास उसके मुख के प्रकाश से नित्य प्रति पूर्णिमा ही बनी रहती है, अर्थात रात्रि भर चांदनी का प्रकाश बना रहता है, जिससे यह पता नहीं लग पाता कि चंद्रमा का उदय किस समय हुआ है। इसलिए उसके घर के आसपास चंद्रमा देखने से ही विदित होता है कि आज कौन सी तिथि है। विशेष, उक्ति द्वारा कथन का समर्थन होने से काव्यलिंग अलंकार। दूसरा, उसके घर के पहु पास पूर्णमासी को चांदनी रहना एक स्थान पर किसी वस्तु का सिमट कर आ जाता में परिसंख्या अलंकार है। तीसरा, मुख्य सौंदर्य का लोक सीमा से परे वर्णन होने के कारण अत्युक्ति अलंकार है। कोऊ कोरिक संग्रह, कोऊ लाख हजार, मो संपत्ति जदुपति, सदा विपत्ति विदारनहार। प्रसंग, इसमें संतोष वृत्ति एवं भगवत भक्ति का निरूपण किया गया है। संसार में भिन्न प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग धन संपत्ति को ही मानते हैं। धन को प्रधान मानने वाले लोग भले ही हजारों लाखों अथवा करोड़ों में धन का संग्रह कर सुख का अनुभव करें, किंतु मेरे लिए तो श्री कृष्ण ही परम धन है, जो सभी विपत्तियों को दूर करने वाले हैं। तंत्री नाद कवित्तिरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तिरेज चूड़े सब अंग। संदर्भ, यहाँ कवि की उक्ति है, वह तंत्री नाद काव्य रस सरस रस रतिरंग में सर्वांग निमग्नता को सर्वस्व भव सागर से मुक्ति मानता है। व्याख्या, बिना आदि के मधुर वाद्य स्वर काव्य माधुरी सरस राग रतिरंग में जो लोग बड़े नहीं बूढ़े वे सब प्रकार से बूढ़े गए अर्थात नष्ट हो गए। इनमें जो पूर्ण रूप से निमग्न हो गए वे तर गए अर्थात उनको अभीष्ट प्राप्त हो गया। यहाँ कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि तंत्री नाद काव्य रस रस राग आदि ऐसी कलाएं और पदार्थ है जिनमें बिना पूर्ण रीति में डूबना जिनमें बिना पूर्ण रीति में डूबना पड़ता है। सर्वांग इनमें डूब जाओ अन्यथा इससे दूर रहो। अलंकार क, विरोधाभास ख श्लेष, यहाँ दोहा बिहारी की रसिक और प्रेम प्रकृति का परिचय देती है। नयक न झरसी बिरह जर नेह लता कुमलाती नित नित होती हरी हरी खड़ी झालरती जाती। प्रसंग, इसमें नायिका की सखी नायक के से उसके प्रति नायिका के हृदय में नवीन होने वाले वर्धमान प्रेम का वर्णन कर रही है। सखी कहती है, हे नायक, नायिका के हृदय प्रदेश में स्थित प्रेम की लता विरह की तीव्र ज्वाला से थोड़ी सी दही झुलसी, वह तो मुरझाने के बजाय नित्य प्रति हरी भरी होकर प्रलवित होकर बढ़ रही है। भाव यह है कि नायिका के हृदय में तुम्हारे प्रति नित्य नवीन अनुराग बढ़ रहा है, प्रेम में किसी प्रकार की नूतनता नहीं आने पाई है। केसरी केसरी क्यों सके चंपक किटक अनूप जात रूप लखी जात दूरी जात रूप को रूप। प्रसंग, इसमें गौर वर्ण वाली नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। वह गौरांगी नायिका इतनी सुंदर है कि उसकी स्वर्णिम शरीर आभा की क्षमता किसी से नहीं की जा सकती। चंपा का फूल भी गौर रंग का होता है किंतु उसमें इतनी शोभा कहाँ है जो नायिका के छवि के बराबर हो सके। केसर भी सुनहली होती है किंतु वह उसकी कांति की बराबरी कर सकती। उस छबीली नायिका की शरीर कांति का देखकर सोना भी लज्जित हो जाता है, तो अन्य दूसरी वस्तुओं की गणना ही क्या। भाव यह है कि नायिका का शरीर कांति केसर चंपा एवं सोना से बढ़कर है। मकराकृत गोपाल के कुंडल सोहत कान धस्यो मनोहिय धर समय द्योधि लसत निशान। संदर्भ, कवि की युक्ति है, वह कृष्ण के कानों में शोभायमान कुंडलों का वर्णन कर रहा है और संकेत कर रहा है कि कृष्ण यौवन को प्राप्त हो गए, उनके हृदय में काम निपतियों ने प्रवेश कर लिया है। व्याख्या, श्री कृष्ण के कानों में मछली के आकार के कुंडल शोभा दे रहे, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो कामदेव श्री कृष्ण के गढ़ हृदय रूपी घर में घुस गया हो, में प्रवेश कर गया हो और ये कुंडल उसकी ध्वजाएं हैं जो गढ़ के द्वार पर शोभा दे रही है। विशेष, कृष्ण श्रृंगार रस के देवता या नायक है। कवि ने श्रृंगार रस के आलम्बन के रूप में यहाँ उनके सौंदर्य का वर्णन किया है। रस श्रृंगार रस, अलंकार दूसरी पंक्ति में उत्प्रेक्षा, कुंडलों में गढ़ के बाहर ध्वजादी राज सिंधुओं की संभावना की गई है। खौड़ी पनच भ्रिकुटी धनुष बधिक समर तजिकानी हनत तरुण मृग तिलक सर सुरक भाल भरी तानी। संदर्भ, इस दोहे में नायिका की भ्रिकुटियों का वर्णन किया गया है। नायक जो नायिका पर मुग्ध हो जाता है वह सखी अथवा मित्र से नायक की भ्रिकुटियों की प्रशंसा कर रहा है। उस सुंदरी नायिका के भ्रिकुटी रूपी धनुष पर खौर रूपी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, उस पर कामरूपी व्याट ने सुरक रूपी गांसी वाले तिलक रूपी सर का संधान किया है। अब वह प्रत्यंचा को खींचकर और मर्यादा छोड़कर युवक रूपी हरिणों का शिकार करता है। विशेष, उद्दीपन के रूप में भ्रिकुटियों का वर्णन है, नायिका यौवनवती मुग्धा पर किया है। अलंकार, शांग रूपक उपमेय पर उपमानों का अंगों सहित आरोप है। क, भ्रिकुटी पर धनुष का आरोप। ख, खौड़ी पर प्रत्यंचा का आरोप। ग, कामदेव पर ब्याज का आरोप। घ, युवरों पर मृग का आरोप। तिलक पर सर का आरोप। च, सुरिक पर भाल का आरोप। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। प्रसंग, किसी भक्ति की उक्ति है। व्याख्या, इस अनुरागी मन की गति अनोखी है, इसकी गति समझ में नहीं आती। जितना ही अधिक यह श्याम काला कृष्ण के प्रेम में डूबता है उतनी ही अधिक इसकी मलिनता दूर होती है। विशेष, विशेष का विरोध का आभास होने मात्र से विरोधाभास अलंकार है। कृष्ण के प्रेम में डूबकर मन की मलिनता दूर हो जाएगी। श्याम शब्द में श्लेष का चमत्कार है। करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाणत नीचू दीनेहू चश्मा चखिन चाहे लहे न मीचू। प्रसंग, प्रस्तुत दोहा में बिरह व्यथित नायिका की दुखावस्था का वर्णन सखी के द्वारा सखी से अथवा नायक से किया गया है। सखी कहती है, देखो उस बेचारी को विरह इस दुस्सह अवस्था में पहुंचा कर भी उसका पीछा अपनी निम्न वृत्ति के कारण नहीं छोड़ रहा। उसकी दशा तो उस इस समय ऐसी सोचनीय हो गई है कि मृत्यु से आंखों पर चश्मा देकर खोजने पर भी नहीं पा रही। अंतिम पंक्ति में नायिका की शारीरिक कृष्ठा का अत्युक्तिपरक वर्णन किया गया है। जपमाला छापा तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। संदर्भ: यहाँ बिहारी धर्म उपासना और पूजा के बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सरल और सच्ची मन से राम की भक्ति करने की प्रेरणा देते हैं। माला जपने और मस्तक पर तिलक लगाने में मात्र से मनुष्य का कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, अर्थात पूजा और उपासना के बाह्य आडंबरों से भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते, जब तक मनुष्य के मन में छल कपट पाप और माया मोह के विकार को भरे हुए हैं, तब तक उनको संसार के भ्रम एवं माया जाल में बांध कर नाचना पड़ता है। भगवान तो सच्चे प्रेम से ही प्रसन्न होते हैं, इन बाह्य आडंबरों से नहीं। रस शांत रस अलंकार अनुप्रास: आवत जात न जानियत तेजहि तजि सिरान, घड़ा जमाई लो घट्यो खड़ों पूस दिन मान। प्रसंग: इस दोहे में लोक प्रचलित व्यवहार के माध्यम से कवि ने माघ पूस के घटते हुए दिन का वर्णन किया है। व्याख्या: कवि कहता है कि शीतकाल के माघ पूस के महीनों में सर्दी के कारण सूरज इतना तापहीन हो जाता है कि उसके आगे आने का किसी का भी ध्यान नहीं रहता। ससुराल में रहने वाले दामाद के प्रभाव और सम्मान की भांति ही माघ पूस के दिन का प्रभाव एकदम घट जाता है। तजि तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होट प्रयाग। संदर्भ: तीर्थाटन प्रिय व्यक्ति के प्रति किसी भक्त का कथन है। व्याख्या: तीर्थों में अटन करना व्यर्थ है, तीर्थों में घूमकर समय नष्ट करने वाले मनुष्य तो श्री कृष्ण और राधिका जी की छवि से प्रेम पूर्वक युगल मूर्ति की माधुरी का अवलोकन करो। कृष्ण राधा के तन की प्रभाव ब्रजभूमि की केली निकुंजों के मार्गों में पग पग में व्याप्त है, और जिसके कारण वहाँ की पग पग की भूमि तीर्थराज प्रयागराज के समान पुण्यदायिनी और त्रिवेणीवत पावन हो रही है। विशेष: कृष्ण और राधा के चरणों के प्रभाव से ब्रजभूमि का त्रिवेणीवत तीर्थराज प्रयाग हो जाना स्वाभाविक ही है। अलंकार उल्लास: तजि तीरथ में टौ वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छेका अनुप्रास, पग पग में पुनरुक्ति प्रकाश, मग पग पग में गौवर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास, युक्ति द्वारा कथन का समर्थन होने में काव्यालिंग, ब्रजभूमि में तीर्थराज प्रयाग के गुणों का आना, वर्णन होने से तद्गुण अलंकार। कौड़ा आंसू बूंद कसी सांकर बरुनी सजल, कीने बदन निमुंड दृग मलंग डारे रहत। संदर्भ: नायिका पूर्वानुरागिनी है, वह आंखें बंद किए हुए नायक के ध्यान में निमग्न है, उसके नेत्रों की कोरों में आंसू भरे हुए हैं। सखी नायक से नायिका के नेत्रों को मलंग थहराकर उसकी विरह दशा का वर्णन करती है और उसे दर्शन की भिक्षा देने की प्रार्थना करती है। व्याख्या: उसके दृग मलिंग आंसुओं के कौड़े और सजल बरौनी रूपी सांकलों को अपने शरीर पर कसकर मुंह बंद किए हुए अपने को डाले रहते हैं, आप चलकर उसके दर्शन की भिक्षा दीजिए। विशेष अलंकार: दृगों में मलंग पर अंगों सहित आरोप होने से सांग रूपक अलंकार है। नायिका पूर्वानुरागिनी परिकिया है, नायिका की यह अवस्था मरण सूचक है, इसमें व्याधि की अवस्था का वर्णन है। गिरीते ऊंचे रसिक मन बूढ़े जहां हजार, वह सदा पशु नरन को प्रेम पयोधि पगार। व्याख्या: कवि प्रेम की दिव्यता की व्यंजना करते हुए कहता है कि प्रेम रूपी जिस महासमुद्र में रसिक जनों का विशाल हृदय मग्न हो जाता है, वही अरसिक लोगों का तुच्छ वृत्ति वालों का गड्ढा सा छिछलाया साधारण दिखाई पड़ता है। कवि के कहने का तात्पर्य है कि प्रेम की महत्ता और गहराई का बोध उच्च विचारों वाले सुसंस्कृत पुरुषों को ही होता है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। प्रसंग: यह दोहा अन्योक्ति परक है, इसमें भौरे को माध्यम बनाकर कोई गति यौवना अपने कुटिल प्रेमी अथवा कोई दुर्दिन को प्राप्त अनाध्य व्यक्ति अपने कृतघ्न मित्र से समय परिवर्तन की शीतलता को बड़ी व्यथा में व्यक्त कर रहा है। व्याख्या: भौरे को माध्यम बनाकर चंचल विटी अवसरवादी लोगों को, जो कि सुख के समय तो छक्कर रख लेते हैं किंतु दुख में किनारे भी नहीं पटकते, कवि संबोधित कर रहा है। वह कह रहा है कि हे भ्रमर, जिस दिन तू इन कुसुमों के सरस सौंदर्य को देखकर आकर्षित हुआ था, वह बहार तो अब बीत गई, अब तो इस गुलाब में केवल कटीली डालियां ही शेष रह गई है, अब यहाँ तेरे आकर्षण का कोई कारण नहीं रहा जिससे तू यहाँ रह सकेगा। आड़े दे आले बसन जाड़े हूँ की रात, साहस करे स्नेह बस सखी समय धिग जात। प्रसंग: इस दोहे में विरह के ताप से तप नायिका की शारीरिक दशा का अतिरंजित वर्णन है। दूसरा: वियोग के ताप से नायिका के शरीर का तापमान इतना बढ़ गया है कि उसके पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। कवि कहता है कि ताप न सह सकने के कारण उस नायिका की सगी सखियां जाड़े की रात में गीले वस्त्र ओढ़कर प्रेम पश उसके पास साहसपूर्वक जाती है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा देखु विहंग विचार, बाज पड़ाए पानी पड़ी, टू पक्षी न मार। प्रसंग, यहाँ पर बाज को माध्यम बनाकर किसी परवशवर्ती स्वजाति विरोधी और विवेकी व्यक्ति को अन्योक्ति परक उक्ति कही गई है। व्याख्या, हे बाज, तू दूसरों के हाथ में अर्थात सलाह में पड़ कर पक्षियों अर्थात अपने ही जातीय बंधुओं को मत मारू। तुम्हारे इस कार्य में न तुम्हारा कोई लाभ निहित है, न यश और कीर्ति ही है, अतः तुम्हारा यह भ्रम व्यर्थ है। तीज परब सौटिन सजे, भूषण बसन शरीर, सबे मरगजे मुँह करी, वहे मरगजे चीर। प्रसंग, सिकुड़न से भरी साड़ी को देखकर नायिका की सौटों को उसकी अति रीति उसकी रति रंगिता का बोध हो जाता है, जिससे वे हतप्रभ हो जाती है। व्याख्या, तीज के सुहावने पर नायिका की सौटों ने आभूषणों और वस्त्रों से अपने को सजा रखा है, किंतु नायिका की सिकुड़न भरी साड़ी देखकर उसकी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है, क्योंकि उससे नायक का उसी त्यानुराग प्रमाणित होता है। भूषण भार सवारी है, क्यों इति तन सुकुमार, सूधे पाए न धरी पड़त, शोभा ही के भार। प्रसंग, इस दोहे में यौवनांकुरित नायिका के सहज सौंदर्यपूर्ण चापल्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या, सहज सौंदर्य संपन्न यौवनांकुरित नायिका की चलकती चाल को लक्ष्य करके कवि कह रहा है कि यह सुकुमार शरीर आभूषणों के भार को कैसे सहन कर सकेगा, जो कि सौंदर्य के भार से ही सीधे नहीं चल पा रही है, अर्थात इसका सौंदर्य आभूषणों के बिना अतीव आकर्षक है। सहज चेत पंच टोरिया, पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो, जगमगाती तंजोत। प्रसंग, सखी नायक से नायिका के शरीर की शोभा का वर्णन कर उसमें नायिका से मिलने की लालसा जागृत कर रही है। व्याख्या, सामान्य श्वेत पंचतोड़िया साड़ी पहनने से नायिका की छवि अत्यंत बढ़ जाती है, उसके शरीर की कांति जल चादर के पीछे रखे हुए दीपकों के समान जगमगाती है। विशेष, राजाओं या धनिकों के बाग में ऐसी सजावट होती थी कि किसी ऊंचे स्थान से जल की झील तथा विस्तृत जल गिराया जा सकता था, तो या जल चादर कहलाता था। जल चादर के पीछे गवाक्ष बनाकर दीपकों की पंक्ति जला दी जाती थी। रात्रि के समय जल चादर के पीछे जगमगाती हुई दीपावली बड़ी शोभा देती है। इसी को बिहारी ने जल चादर के दीप कहा है। महाराजा रंजीत सिंह के शालीमार बाग और श्री अयोध्या जी के अवध नरों के बाग में श्रृंगारवन नामक बाग में अब तक जल चादर है। लिखन बैठी जाकी सबही गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। संदर्भ, यहाँ सखी का कथन नायक के प्रति है। वह नायिका के छन छन परिवर्तित उभरते हुए सौंदर्य की प्रशंसा कर रही है। व्याख्या, हे लाल, मैं उस नायिका से आपका प्रेम कराना चाहती हूँ जिसका यौवन अंकुरित हो रहा है। चतुर चितेरे चित्रकार भी उसका इस समय यथार्थ चित्र बनाने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उसका सौंदर्य प्रतिक्षण परिवर्तित होकर अधिक छविमान हो रहा है। चित्रकार जब चित्र बनाने के पश्चात उससे मिलता है तो इतने ही अंतर में उसकी छवि और अधिक बढ़ जाती है और उसका चित्र नायिका के यथार्थ सौंदर्य से नहीं मिलता। इस प्रकार चतुर चित्रकार को भी मूड बनना पड़ता है। मैं उस नायिका की प्रतिक्षण बढ़ती हुई शोभा का वर्णन क्या कर सकता हूँ जिसका यथार्थ चित्र बनाने के लिए घमन अभिमान से भर भर के कितने ही चित्रकार आए किंतु उनका यथार्थ चित्र न बना पाने के कारण उनको मूड बनना पड़ा। विशेष, अलंकार वक्रोक्ति विशेषोक्ति चतुर चितेरे होने पर भी चित्र न बना। दूसरा, नायिका अंकुरित यौवना वह संधि प्राप्त मुग्धा नायिका है। तीसरा, नायिका परकिया और नायक पर पुरुष है। तियकित कम नैति पढ़ी बिनुजिहि भौहो कमान, चलचित बेझो चुकत नहीं बंक बिलोक निबान। व्याख्या, संदर्भ, सखी का कथन नायिका के प्रति है। हे प्रिय, तूने ऐसी धनुर्विद्या किससे सीखी है कि बिना प्रत्यंचा की भौं रूपी कमान से तिरथी चितवन रूपी बाण चलाकर चंचल चित्त रूपी निशान को कभी चूकती नहीं। विशेष, यहाँ श्रृंगार रस में अद्भुत रस का मेल हुआ है। अद्भुतता निम्नलिखित है, कमान बिना प्रत्यंचा की ही चितवन रूपी बाण भी दे रहा है, चित्त जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता उसका भी निशाना बताया गया है। नायिका पर किया है, अलंकार विभावना अपूर्ण कारण से कार्य हो रहा है, चलचित में वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रास, बंक विलोकनी में बाण का आरोप होने से रूपक, बंक बाण में वर्ण की एक बार आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास। दृग उर्झत टूटत कुतुब जुड़त चतुर चितप्रीत, प्रतिगांठी दुर्जन हिये दई नई यहरीत। संदर्भ, नायिका का कथन सखी के प्रति है। वह अपने हृदय का तर्क वितर्क व्यक्त कर रही है। विधाता ने प्रेम की यह कितनी विलक्षणता रीति कहाँ बनाई, उलझते तो नेत्र हैं और टूटता है कुटुंब, अर्थात नायिका के नेत्रों से लागा लागी करते हैं, परंतु बदनामी के कारण कुटुंब से उसका संबंध टूट जाता है। चतुर प्रेमियों के चित्त में प्रीति जुड़ती है किंतु चबाव और निंदा करने वाले दुष्टों के हृदय में गांठ पड़ती है। दो प्रेमियों को प्रेम करते देखकर दुष्ट जन ईर्ष्यावश उनकी निंदा करने लगते हैं। विशेष जो चीज उलझती है उसी को टूटना चाहिए, परंतु प्रेम की तो रीति ही विलक्षण होती है। प्रेम में नेत्र उलझते और कुटुंब टूटता है। चतुरों के चित्त की प्रीति जुड़ती है, परंतु गांठ पड़ती है दुष्टों के हृदय में। नायिका परकिया है, वितर्क संचारी है। अलंकार कारण कहीं और कार्य का होना अन्यत्र वर्णन होने से असंकति अलंकार। दई दई में विपसा और अनुप्रास अलंकार। ऊंचे चिते सराहियत गिरह कबूतर लेत, झलकित दृग पुलकित बदन तन पुलकित की नहीं हेत। प्रसंग नायिका को देखकर प्रसन्न होती हुई नायक को देखकर प्रसन्न होती हुई नायिका कबूतर की कलाबाजी को देखने का बहाना अपनी सखी से करती है, किंतु वह वास्तविकता समझ जाती है और प्रश्नवाचक युक्ति से उससे कहती है। नायिका की सखी उसको भाव छिपाने पर व्यंग करती हुई पूछती है कि तुम ऊपर की ओर देखकर कलाबाज कबूतर को सराह रही हो, किंतु तुम्हारी आंखों में ज्योति, मुख पर प्रसन्नता और शरीर में पुलक क्यों हो रही है। रनित मृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। प्रसंग इसमें बसंत की वायु का वर्णन मतवाले हाथी के रूपक के साथ प्रस्तुत किया गया है। व्याख्या भौंरों रूपी घंटावली की ध्वनि करता हुआ और मकरंद रूपी मर्ग बहाता हुआ कुंज समीर रूपी हाथी मंद मंद गति से चला आ रहा है। लपटी पुहूप पराग पत शनि स्वेद मकरंद, आवती नारी नवोधलो सुखद बाय गतिमंद। प्रसंग इस दोहे में कवि नवोधा नायिका को उपमा के रूप में शीतल मंद सुगंध युक्त वायु का वर्णन करता है। व्याख्या पुष्पराज रूपी वस्त्र में लिपटी हुई पसीने अर्थात मकरंद से भीगी हुई सुखद वायु नवोधा नई ब्याहता की भांति धीरे धीरे चली आ रही है। लाल तिहारे रूप की कहो रीति यह कौन, जासो लागे पलक दृग लागे पलक पलो न। प्रसंग पूर्वानुरागी नायिका की मुग्ध स्थिति का वर्णन किया गया है। व्याख्या नायिका की सखी नायक से कहती है, हे लाल तुम्हारे रूप का यह कैसा विलक्षण प्रभाव है जिसे पल भर ही देख लेने मात्र से फिर पलके नहीं लगती अर्थात नींद नहीं आती। त्यों त्यों रहत ज्यों ज्यों पियत अघाय, सगुन सलोने रूप की जूना चकटसा बुझाए। प्रसंग इसमें नायक की आकर्षक छवि का वर्णन किया गया है। व्याख्या नायिका का कथन है कि पलके तुम्हारे रूप रस को पीकर जैसे जैसे तृप्त होना चाहती है वैसे वैसे इनकी प्यास लावण्य रूपी जल को पीकर बढ़ती ही जाती है, बुझती नहीं। मोर मुकुट की चंद्रकनी यौराजत नंद नंद, मुनि मनुषशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। व्याख्या मोर मुकुट की चंद्रिकाओं से चमकते कृष्ण के मुखमंडल की आभा बड़ी ही शोभनीय लग रही है। ऐसा लगता है कि मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले शिव के सौंदर्य से ईर्ष्या कर कामदेव उन्होंने अपने मस्तक पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर रखा है। अधर धरत हरि के परत ओठ धीठी पत चोट, हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होट। प्रसंग इसमें बंसी बजाते हुए कृष्ण की एक मुद्रा विशेष में बांसुरी की स्थिति का वर्णन करते हैं। व्याख्या अधरोष्ठों पर रख बांसुरी बजाते समय यह हरे रंग के बांस की बांसुरी ऊपरी होठों के लाल रंग, आंखों के नीले रंग, वस्त्रों के पीले रंग की छाया से समन्वित होकर इंद्रधनुष के समान सप्तवर्णी हो जाती है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यही दिशि नंद किशोर। व्याख्या यहाँ कवि श्री कृष्ण के सरस नीले रंग और बांसुरी की सुमधुर ध्वनि को लक्ष्य करके कहता है कि जंगल में बिना बादल के ही एकाएक मोर नाच उठते हैं। ऐसा लगता है कि इस दिशा को श्री कृष्ण ने अपने आगमन से आनंदित कर दिया है। बतरस लालच लाल की मुरली धड़ी लुकाए, सोह करे भौहनी हसे देन कहे नति जाए। प्रसंग श्री कृष्ण से बातचीत करने के उद्देश्य से गोपियाँ उनकी बांसुरी छिपा देती है और मांगने पर विभिन्न तरह की चेष्टाएँ करती रहती हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से बात करने के लोभ से उनकी वंशी छिपा देती है। कृष्ण के द्वारा अपनी वंशी मांगने पर वह सौगंध खाती है कि हमने नहीं रखी है, फिर बहुएं में मुस्कुरा देती है जिससे यह संदेह हो जाए कि वह जानती है। इसके बाद पुनः देने के लिए वे कहने पर नकार जाती है। पावन घन अंधियान में रहियो भेद नहीं आन, राती ढौंस जान्यो पड़त लखी चकई चकवान। संदर्भ यहाँ कवि ने वर्षा ऋतु में सघन घटाओं का वर्णन किया है। व्याख्या वर्षा ऋतु में सघन घटाओं के कारण इतना घना अंधकार हो जाता है कि रात दिन में कोई अंतर नहीं रह जाता, अर्थात सघन बादलों के कारण दिन में भी रात का सा घना अंधकार हो जाता है। रात दिन के समय का भेद चकई चकवाओं का पृथक पृथक एवं एकत्र लक्षित करके ही जान पड़ता है। विशेष लाला भगवान दीन ने इस दोहे का श्रृंगार पक्ष में किया है और दूती की वचन नायिका के प्रति माना है। नायिका रात्रि में अभिसार जाने की बात कहती है, दूती उसे समझाती है कि घनी घटाओं के कारण दिन में रात्रि का सा अंधकार हो रहा है, कोई देख नहीं पावेगा, अतः तू अभी चले। कहलाने एकट बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाघ निघा निदाघ। व्याख्या, कवि कहता है कि भीषण गर्मी से व्याकुल होकर आपसी शत्रु सर्प और मोर तथा हिरण और बाघ एक ही स्थान में बसते हैं। इस प्रकार इस प्रचंड गर्मी वाली और ग्रीष्म ऋतु ने संसार को तपोवन सा निर्वैर कर दिया है। छकी रसाल सौरभ सदे मधुर माधावी गंध, थौर थौर झूमट झपट भौर झौर मधुर अंध। संदर्भ, यहाँ कवि ने बसंत का और बसंत के बादक सौंदर्य का चित्रण किया है। व्याख्या, आम की मंजरी के सुगंध से छक्कर और बासंती लता की मधुर गंध से सने हुए, पुष्पाराग की मदिरा से अंधे हुए भौरों के समूह स्थान स्थान पर झूमते फिरते हैं और पुष्पित लताओं पर टूट पड़ते हैं। विशेष, लाला भगवान दीन ने इस दोहे में कई संदर्भ लेकर अलग अलग अलंकार माने हैं। कवि की उक्ति में स्वाभोक्ति अलंकार है, सखी का वचन दायिका के प्रति भी बारा जा सकता है। वह वसंत का वर्णन उद्दीपन के रूप में करके दायिका का दायक से संगठन कराना चाहती है। इस संदर्भ में पर्याप्योक्ति अलंकार है, दायिका दायक से बसंत का उत्पादक वर्णन करके उसे विदेश जाने से रोकना चाहती है। इस रूप में आक्षेप अलंकार है। बिरह विकल बिनही लिखी पाति दई पठाए, आंख बिहिनियों सुचित सुने बाँचत जाए। व्याख्या, विरह की विषम व्यथा का उद्घाटन करते हुए कवि कहता है कि नायिका प्रेम वियोग में इतनी बावली हो गई है कि वह बिना कुछ लिखे ही सादे कागज को अपने प्रिय के पास भेज देती है। वह नायक भी अतीव अनुराग के कारण उस अक्षर विहीन कागज को एकांत में जाकर स्वस्थ चित्त से पढ़ता है। छिप्यो छबीले मुख लसे नीले आंचल चीर, मनोकला निधि झलमले कालिंदी के नीर। संदर्भ, नायिका के मुख से सौंदर्य का वर्णन है। व्याख्या, नीले अंचल में ढका हुआ नायिका का सुंदर मुख इस प्रकार शोभा दे रहा है मानो यमुना के जल में चंद्रमा झलमला रहा है। विशेष, अलंकार अनुप्रास और उत्प्रेक्षा। नावक सर से लाए के तिलक तरुणी इटाक, पवन झरसी झमक के गई झरोखा झांक। व्याख्या, वह तरुणी अग्नि ज्वाला सी गौर दीप्ति से तात्पर्य है, झमक कर झरोखे से झांकी और मेरी ओर क्षण मात्र देखकर अपने नयनों के नावक से सर से मुझे बेट गई। चमचमाता चंचल नयन बिच घूंघट पतझीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल उछरत जुगमीन। संदर्भ, प्रस्तुत दोहे में कवि ने अंचल के अंदर चंचल नेत्रों की शोभा का वर्णन किया है। व्याख्या, नायक किसी अपने सुहृद से नायिका के चपल नेत्रों की सुंदरता का प्रशंसा करते हुए कहता है कि घूंघट के झीन पथ से होकर जब उसके चंचल नेत्र चमकते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा जी के श्वेत एवं स्वच्छ जल की दो मछलियां उछल कूद कर रही हैं। विशेष, यहाँ कवि ने घूंघट की गंगा जल से और नेत्रों की मछलियों से उपमा दी है। गंगा जल से उपमा देकर नायिका के चरित्र की पवित्रता एवं चंचलता की व्यंजना की है। अलंकार अनुप्रास से पुष्ट उपेक्षा। यह दोहा बिहारी के वर्णन एवं समाहार शक्ति का द्योतक है। एक ही दोहे में अनेक भाव गूंथ दिए गए हैं। अनियारे दीरग दिग्नी कृति न तरुणी समान, वह चितवनी औरे कछु जी बस होत सुजान। संदर्भ, यहाँ सखी का कथन नायक के प्रति है। वह नायिका के सुदीर्घ नुकीले और आकर्षित करने वाले विशेष चितवन की प्रशंसा कर उसे नायिका के मिलने के लिए प्रेरित कर रही है। इस ग्राम में नुकीले और दीर्घ नेत्रों वाली कितनी ही स्त्रियां हैं। उनके नुकीले और सुदीर्घ नेत्र सौंदर्य से युक्त हैं अथवा उनको अपने नेत्र की सौंदर्य का गर्व है, परंतु उस नायिका की चितवन कुछ विशेष प्रकार की है जो किसी और की नहीं है। उस चितवन के वशीभूत चतुर जन भी हो जाते हैं और तुम भी चतुर हो। विशेष, अलंकार एक अनियारे से किति नाम एक काकू वक्रोक्ति अलंकार है। ख, अनियारे और दीर्घ नेत्रों की दृष्टि से सभी तरुणियाँ समान है किंतु उसमें विशेषता है विलक्षण चितवन की, अतः उपमेय में उपमान से अधिक गुण कथन होने के कारण व्यतिरेक अलंकार है। ग, वह से सुजान में भेद काती सियोक्ति नायिका पर किया। चिरजीवो जोड़ी जुड़े क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिये विष भानुजा वे हलधर के वीर। संदर्भ, सखी सखी से हास्य के उद्देश्य से राधा कृष्ण की अनन्यता का वर्णन कर रही है। व्याख्या, राधा कृष्ण की यह युगल जोड़ी दीर्घजीवी हो, राधा और कृष्ण दोनों में गहरा प्रेम जुड़ना ही चाहिए क्योंकि दोनों समान हैं, दोनों किसी भी स्थिति में कम नहीं है। यानी राधा विश्वालु की पुत्री है तो कृष्ण बलराम के भाई हैं। दोनों में जाति और वर्णगत समानता भी है क्योंकि राधा बैल की बहन है तो कृष्ण बैल के भाई हैं। काव्य सौंदर्य, राधा को बैल की बहन कृष्ण को बैल का भाई कहकर कवि ने हास्य की सुंदर सृष्टि की है। व्यंग्य से बैल की बहन और बैल का भाई अर्थ लेने से श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। सम अलंकार सामान्य अर्थ के अंतर्गत है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मनहुए जात अजों वहे वा जमुना के तीर। प्रसंग। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग से कातर गोपियां बातचीत करती है। उनमें एक गोपी कहती है, हे सखी, यमुना के तट पर जहाँ श्री कृष्ण के साथ विभिन्न विहार किए थे, अब भी उनके न होने पर भी मन उनके स्मरण में डूब जाता है। वैसा ही हो जाता है जैसा कि कृष्ण के साथ हो जाने पर हो जाता था। अतः सघन कुंज की छाया और सुरभित समीर जो वियोगी को दुखदायी और तापकर होती थी, सुखद और शीतल हो जाती है। विशेष अलंकार स्मरण शीतल सुरभि समीर में सौ वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होने से वृत्यानुप्रास प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन है। सोहत ओधे पीत पट श्याम सलोने गात मनो नील मनि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रसंग। इस दोहे में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन हुआ है। व्याख्या। कवि कहता है कि पीले वस्त्र को ओढ़े हुए श्री कृष्ण का रूप अत्यंत मनोहर लगता है। उनके सरस श्यामले शरीर पर पीला वस्त्र ऐसा सुशोभित हो रहा है जैसे नीली पत्थरों की पहाड़ी की शिला पर प्रभात की सूर्य किरणें पड़ रही हों। समाप्त।